समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान।
किसी ने ठीक ही कहा है कि उसे भगवान कहें या प्रकृति, कोई तो है जो डोर संभाले हुए है। किसी के पास तो वो बही खाता है जिसमें सभी के कर्मों का लेखा जोखा है। उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने तो संसार को अपनी सबसे उत्कृष्ट कृति के रूप में ही बनाया है, जहां इंसान के मन को भाने वाली हर वो चीज मौजूद है जिसकी उसे दरकार है। लेकिन कई बार किन्हीं कारणों की वजह से मानवता के बीच वैमनस्य इतना बढ़ जाता है कि देश आपस में ही लड़ने लगते हैं, और ये प्रश्न कहीं ना कहीं पीछे चल रहे गीत की तरह अपने अस्तित्व के होने की पुष्टि करता दिखलाई पड़ता है कि हे ईश्वर, तेरे इस संसार की हालत क्या हो गई है। बहरहाल आज की इस नई ओजपूर्ण सुबह में समाचार पत्र का कार्यक्रम आज सवेरे में श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार बल, और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, गुड मॉर्निंग, हैप्पी ट्यूसडे फ्रेंड्स। विद पीस इन आवर हार्ट्स एंड काइंडनेस इन आवर सोल्स, लेट्स ट्राई टू लीड अ पॉजिटिव लाइफ। वी वेलकम यू ऑल टू आवर मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द प्रोग्राम। एंड मुकेश, वी आर गोइंग टू बिगिन विद सम न्यूज हेडलाइंस।
जी,
US President Donald Trump has announced that Iran and Israel have agreed to a complete and total ceasefire, which will come into effect in the coming hours. The announcement was made last night, shortly after Iranian attack on US airbase in Qatar. In a statement on Truth Social, Trump said the ceasefire would begin once both countries are wound down and completed their ongoing final missions. The statement also noted that during each side's ceasefire period, the opposing side is expected to remain peaceful and respectful. Meanwhile, Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi has denied any agreement on a ceasefire with Israel. In a social media post, Araghchi said that the final decision on the cessation of our military operations will be made later on. He further added that Tehran has no intention to continue its response, provided the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people.
Iran ne Qatar mein Al Udeid airbase par ballistic missile se hamla kiya hai. ये पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य प्रतिष्ठान है। ईरान ने कहा कि ये हाल ही में अमेरिका द्वारा उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर की गई बमबारी का बदला है। कार्रवाई में मुख्य लक्ष्य अल उदीद था, जो दोहा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ईरान ने इराक में एन अल असद बेस को भी निशाना बनाया है। कतर और अमरीका के अधिकारियों ने हमलों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं दी है। कतर ने कहा है कि बेस को खाली करा लिया गया है और इसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने आने वाली मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया है। एक अमरीकी रक्षा अधिकारी ने पुष्टि की कि एयरबेस पर ईरान से आने वाली छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि उस समय अमरीका के किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं थी। ये हमला कतर द्वारा अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने और अमरीकी दूतावास और अमरीकी नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर रहने के निर्देश के कुछ घंटों बाद हुआ।
Under Operation Sindhu, a total of 290 Indian nationals and one Sri Lankan national who were evacuated from Mashhad arrived in New Delhi last evening on a special flight under Operation Sindhu. The External Affairs Ministry informed that with this, 2003 Indian nationals have been safely brought back from Iran so far. Meanwhile, the first batch of 161 passengers will arrive in Delhi today from Amman, Jordan, under the operation. These individuals were evacuated from Israel and moved to Amman by road.
कतर के अल उदेद अमरीकी हवाई ठिकानों पर ईरान के हमलों के बाद तेल की वैश्विक कीमतों में पिछले 5 वर्षों में एक ही दिन में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई। ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमरीका के हमलों की प्रतिक्रिया में ईरान द्वारा जवाबी हमले करने के बाद तेल की कीमतें $5 प्रति बैरल फिसल कर इसमें 6% से अधिक की गिरावट आई। सप्ताहांत के तनावों के कारण तेल बाजार में शुरुआत में उछाल आया, लेकिन तेल की बिकावली तेजी से शुरू हुई। सूत्रों का कहना है कि तेहरान ने पहले से कतर के अधिकारियों के साथ हमला करने के लक्ष्यों और उसके समय को लेकर समन्वय किया होगा। विश्लेषक इसे व्यापक संघर्ष को टालने के प्रयास के रूप में देख रहे हैं। ईरान ने तेल प्रतिष्ठानों, पाइपलाइनों, हार्मुज जलडमरू मध्य पर हमले नहीं किए हैं। ऊर्जा अवसंरचना पर सीधे खतरे नहीं होने के कारण बाजारों को पुनः आश्वस्त होने में सहायता मिली है।
इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्लास Axiom 4 mission to the International Space Station is now targeting a launch tomorrow, according to a statement on NASA's official website. NASA, Axiom Space and SpaceX are aiming for a launch at 12:01 p.m. IST tomorrow for the fourth private astronaut mission to the ISS. The mission is set to lift off from Launch Complex 39A at NASA's Kennedy Space Center in Florida. India Meteorological Department, IMD, has forecast for increase in rainfall activity with isolated heavy to very heavy rainfall over northwest India from tomorrow onwards. It said very heavy to extremely heavy rainfall is expected in Madhya Pradesh today. There is forecast for heavy rainfall in Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Gujarat, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Western Uttar Pradesh, Rajasthan, Kerala and Karnataka today. Fishermen have been advised not to venture over along and off Gujarat coast, Konkan coast, Andhra Pradesh coast, Central Bay of Bengal and Andaman Sea today.
जी सुभद्रा, अगर खेलों में बात करें तो हेडिंगले लीड्स में एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट ट्रॉफी के पहले मैच में भारत द्वारा निर्धारित 371 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान इंग्लैंड ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक बिना किसी नुकसान के 21 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड को ये टेस्ट जीतने के लिए 350 रन की आवश्यकता है, जबकि भारत को मैच जीतने के लिए कल अंतिम दिन सभी 10 विकेट लेने होंगे। इससे पहले भारत की दूसरी पारी 364 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से ऋषभ पंत और केएल राहुल ने शतक लगाए। पंत ने एक ही टेस्ट में 2 शतक लगाने वाले पहले एशियाई विकेटकीपर बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में भारत के 471 रन के जवाब में 465 रन बनाए थे। कार्यक्रम में अगले भाग में हम जानेंगे सुभद्रा से चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख महानगरों की खबरों का हाल।
Yes, Mukesh, we start with news from Chennai. The Anna AI Club was inaugurated at Anna Centenary Library. The club, which will meet every first and third Sunday of the month, aims to provide a platform for experts and anyone interested in AI to share and discuss ideas and disseminate information. The chief librarian, S. Kamachi, has said that the library has collaborated with the Tamil Nadu Centre for Advanced Manufacturing and a private reader's circle called Varungal Padipom to set up the club. She said that in the future, the collaboration will be done with industry experts also. P. Shankar, Director of Public Libraries, said that the role of artificial intelligence in reshaping education and making knowledge more accessible to all. We have another news from Chennai. Southern Railway has said that average daily ridership on the Beach, Chengalpattu and Thambaram sections rose from 1,488 in April to 2,571 in May and further to 2,800 in June. The numbers, while rising, still represent a fraction of suburban ridership. 8 AC services are currently in operation. In another development, Southern Railway has cancelled 2 MEMU Express services running between Arakonam and Salem from June 23 till further notice to accommodate increased train operations for the annual Puri Rath Yatra in Odisha. We are going to Bangalore now. The National Aerospace Laboratories, NAL in Bengaluru, has transferred its next-generation solar absorber coating technology to a Mysore-based company. NAL has patented this product under the Nalson NG brand. This is the second successful licensing of the brand. This transfer of technology marks a significant push towards self-reliance in the solar thermal system, thereby supporting the national missions such as Make in India, Atmanirbhar Bharat, and the National Solar Mission. The indigenous technology will now enable manufacturing of flat plate solar water heaters without importing the evacuated tube collectors, saving cost and foreign exchange. This technology, developed in India by NAL, has undergone rigorous testing aligned with ASTM and International Energy Agency standards. Hyderabad news now. The Telangana state government has decided to present complete facts about the Kaleshwaram project to the Judicial Commission headed by retired Judge Justice P.C. Ghosh before the end of this month. The state cabinet that met yesterday till late evening in Hyderabad resolved to this effect after discussing the communication from the Judicial Commission about the proceedings relating to the Kaleshwaram project, including the discussions in the then state cabinet. The meeting also discussed the questions raised by the judicial panel on the manner in which the previous government had given its approval to the project, as also the report submitted by the cabinet subcommittee in which Agriculture Minister Tummala Nageshwara Rao and BJP MP Itala Rajinder were members. Briefing media after the cabinet meeting, Revenue Minister P. Srinivas Reddy said the cabinet has resolved to go to any extent to protect the interests of the state in Godavari water allocation. And Mukesh, you have news from other cities also right now?
Jee. सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबरों से। दिल्ली सरकार राजधानी को हरित बनाने और पर्यावरण में सुधार के लिए जुलाई महीने में वन महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें हर विधानसभा क्षेत्र, गली और बगीचे में पौधे लगाए जाएंगे। इस अवसर पर 3 जुलाई को भारत मंडपम में एक भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा करेंगे। इस कार्यक्रम में विदेशी औषधीय सजावटी पौधे, प्लास्टिक के बायो फ्रेंडली विकल्प, बागवानी से जुड़ी सामग्रियों की अनोखी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ये राजधानी का पहला वन महोत्सव होगा जिसमें सरकार ने दिल्ली में 70 लाख से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया है। कला, संस्कृति और भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने कल साहित्य कला परिषद द्वारा आयोजित नटखत उत्सव 2025 की सराहना की। उन्होंने कहा कि नटखत उत्सव के साथ दिल्ली बच्चों की रंग बिरंगी कल्पनाओं, जोश और रचनात्मकता से सराबोर है। उन्होंने कहा कि इस महीने की 26 तारीख तक चलने वाले इस नटखट उत्सव का आयोजन शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के सहयोग से किया जा रहा है। ये उत्सव दिल्ली सरकार के 44 स्कूलों में गर्मियों की शानदार छुट्टियों के दौरान आयोजित कला कार्यशालाओं की शानदार पेशकश है, जिसमें 2000 से अधिक विद्यार्थियों ने संगीत, नृत्य, रंगमंच और ललित कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस प्रदर्शनी में आगंतुक सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक जा सकेंगे, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई चित्रकलाएं, शिल्प और अन्य रचनाएं प्रदर्शित की गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल शाम नई दिल्ली में विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अगस्त 2023 से जुलाई 2024 की अवधि के बीच दिए गए भाषण शामिल हैं। ये पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी की गई है, साथ ही इसका ई संस्करण भी उपलब्ध है। राष्ट्रपति भवन द्वारा संकलित और प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक राष्ट्रपति के दूसरे वर्ष के कार्यकाल के दौरान उनके विजन, दर्शन और प्राथमिकताओं को प्रदर्शित करने वाले 51 भाषणों का संग्रह प्रस्तुत करती है। इसके अलावा नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में कल बूथ स्तर अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए 13वें प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत हुई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 379 प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पिछले 3 महीनों में चुनाव आयोग द्वारा नई दिल्ली में 5000 से अधिक BLO और BLO पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि मतदाता सूची की तैयारी और चुनाव जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार सख्ती से आयोजित किए जाएं। ये प्रशिक्षण प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को विशेष रूप से मतदाता पंजीकरण, फॉर्म प्रबंधन और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वयन जैसे क्षेत्रों में सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रतिभागियों को IT उपकरणों पर भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने व्यापार को आसान बनाने की दिशा में 7 तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से पुलिस लाइसेंस की आवश्यकता को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय स्विमिंग पूल, ईटिंग हाउस, होटल, मोटेल, डिस्कोथेक, गेस्ट हाउस, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क समेत कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए पुलिस लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म करता है। उन्होंने कहा कि अब इनके लिए सिर्फ दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता होगी। अगर मुंबई की बात करें तो राज्यभर में डेटा संचालित शासन और नीति वितरण को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय, भारतीय राज्यों के प्रभावी शासन केंद्र के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। CMO सोशल सेक्टर वॉर रूम को प्रभावी बनाने के प्रयासों के रूप में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में मुंबई में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के अनुसार भारतीय राज्यों के प्रभावी शासन केंद्र अगले 5 वर्षों के राज्य को नीति निर्माण में कार्यान्वयन दोनों स्तरों पर तकनीकी विश्लेषणात्मक और रणनीतिक सहायता प्रदान करेगा। अगर कोलकाता की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के कालीगंज विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की निकटतम की उम्मीदवार अलीफा अहमद ने जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के आशीष घोष को 50,049 मतों से हराया। कांग्रेस उम्मीदवार काबुल उद्दीन शेख तीसरे स्थान पर हैं। और हम महानगरों के मौसम का हाल जानने के लिए चलते हैं सुभद्रा के पास।
यस, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम डाउन साउथ, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 32 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 25 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जे क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 30 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with the possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between a minimum of 35 degrees Celsius and a maximum of 26 degrees Celsius. And what about the other cities, Delhi and...
जी सुभद्रा, दिल्ली में आज सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। शहर में आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। अगर बात करें मुंबई की तो मुंबई में भी आंशिक रूप से आज बादल छाए रहने और तेज बारिश होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री रह सकता है। कोलकाता में भी आज सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। शहर में एक या दो बार गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं।
Okay, so you're listening to Art Saveri with Mukesh and yours truly, Subhadra. And Mukesh, you know, before we get to the history of the day, let's take up this very important day. You know, women's role in the society and state, gender equality and women's rights, these are the hot spots around the world these days. So we have it all. Today is the day for it. The United Nations General Assembly has adopted a resolution to designate June 24 of each year as the International Day of Women in Diplomacy. The significant day aims to celebrate the contributions of women to diplomacy and highlight the hurdles women face and the challenges that prevent the equal participation of women at all levels of decision making. So it's time to work towards a world where men and women stand as equals, right? So Mukesh, now let's go to the history section. I'm taking you first to the year 1643. That's the invention of barometer. It marked the invention of barometer, a device used to measure atmospheric pressure. Italian scientist Evangelista Torricelli invented the mercury barometer, which proved the existence of air pressure and laid the foundation for modern meteorology. And 1590, this day, that is June 24, saw the first performance of William Shakespeare's classic comedy, A Midsummer's Night's Dream. The play, the play known for its magical themes and iconic characters remains a popular choice for theatrical productions to this day. And on this day in 1797, Jane Austen's novel, First Impressions, which would later become Pride and Prejudice, was completed. Though initially rejected by publishers, Pride and Prejudice is now one of the most beloved and enduring works of English literature. In 1932, the Promoters' Revolution, a bloodless coup, overthrew Prajadhipok, the king of Thailand, then called Siam, ending the absolute monarchy in that country and initiating the so-called constitutional era. Subsequently, in the year 1939, the original name Siam was changed to Thailand. And 1991, 14-year-old Colombian singer Shakira releases her debut album, Magia, and soon becomes the queen of Latin music, having credited for bringing Hispanic music to the world charts.
जी, अगर इतिहास में और आगे चलें तो 2005 में आज ही के दिन अमेरिका द्वारा भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी की मान्यता दी गई थी। इसके अगले ही वर्ष 2006 में अगर हम बात करें तो फिलीपींस में मौत की सजा को समाप्त किया गया था। और इसके 2 साल बाद 2008 में नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और कार्यक्रम के अगले भाग में अब हम याद करते हैं उन महान हस्तियों को जो आज के दिन हमसे मिले या जुदा हो गई।
ओके, व्हाट आर यू टेकिंग फर्स्ट?
सबसे पहले हम बात करेंगे विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े की।
ओके,
वर्ष 1863 में आज ही के दिन उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ। वे प्रसिद्ध लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ विद्वान और वक्ता थे। उन्हें इतिहासाचार्य राजवाड़े के नाम से ख्याति प्राप्त थी। वे संस्कृत और व्याकरण के भी प्रकांड पंडित थे, जिसका प्रमाण उनकी सुप्रसिद्ध कृतियों राजवाड़े धातुकोश और संस्कृत भाषेचा उलगाड़ा में खास तौर पर दिखलाई देता है। उन्होंने मराठी भाषा में भारतीय विवाह संस्था का इतिहास नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। ये ग्रंथ इतिहासाचार्य राजवाड़े के व्यापक अध्ययन और चिंतन की एक अनूठी उपलब्धि है। इसके अलावा आज जयंती है महान शहीद दामोदर हरी चापेकर की। वे आज ही के दिन पुणे में जन्मे थे। दामोदर हरी चापेकर और उनके दोनों भाई बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर भी भारतीय इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ गए हैं। ये तीनों भाई बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे और चापेकर बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे।
And today we also remember dancer Sanyukta Panigrahi. On a death anniversary today, this choreographer and the foremost exponent of Indian classical dance, Odissi, was also the recipient of the Padma Shri in 1975 for her contribution to dancing and associated activities. She is also the recipient of the Sangeet Natak Academy Award in 1976. And also friends, Pandit Omkar Nath Thakur, a reputed vocalist who could impress class and mass with his performance, a researcher in Indian musicology, a knowledgeable guru, a capable administrator, an impressive orator, having knowledge of many Indian languages and an educationist, was born this day in 1897 in a small village of Gujarat. And of course, his formal education was only up to 5th standard, but he was a self-educated man. And later, due to his scholarly research in music, he was awarded D.Lit by the two prestigious universities of India. And also, Mukesh, he was also the first musician to receive Padma Shri Award by the Government of India. A disciple of classical singer Vishnu Digambar Paluskar of Gwalior Gharana, he became the principal of Gandharva Mahavidyalaya Lahore. And of course, later went on to become the first dean of the music faculty at BHU, that's Banaras Hindu University. And the place is still brimming with activities, imparting music education to all those people who are interested in making music their career and also for researchers.
जी, अगर हम बात करें सुभद्रा, तो वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनके दादा महाशंकर और पिता गौरीशंकर नाना साहेब पेशवा की सेना में योद्धा थे। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का जितना प्रभावशाली व्यक्तित्व था, उतना ही असरदार उनका संगीत भी था। ये हम उनके पीछे चल रहे संगीत से सब समझ ही सकते हैं। एक बार महात्मा गांधी ने उनका गायन सुनकर टिप्पणी की थी कि पंडित जी अपनी मात्र एक रचना से जनता को जितना प्रभावित कर सकते हैं, उतना मैं अपने अनेक भाषणों से भी नहीं कर सकता था। जब वे सूरदास का पद मैं नहीं माखन खायो मोरी मैया गाते थे, तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की कालजयी रचनाओं में वंदे मातरम भी शामिल है। वंदे मातरम पंडित जी के स्वरों से अलंकृत होकर जब रेडियो पर गूंजता था, तब देशवासियों के दिलों में देशभक्ति की लहरें हिलोरे लेने लगती थीं।
And friends, birth anniversary of guitar legend Jeff Beck, a founding member of British band The Yardbirds, an accomplished solo artist. Beck has inspired countless guitar players throughout his career and is ranked as one of the greatest guitarists of all time. Beck's fast, intricate playing influenced the development of the heavy metal and jazz rock styles, made him one of the most respected guitarists in rock music. Very sadly, he passed away 2 years ago in the month of January. Right now you're listening to this track, song Moon River, played by Jeff Beck. That's for Jeff Beck, Moon River. On this day in 1947, Mick Fleetwood, the drummer and co-founder of the iconic rock band Fleetwood Mac, was born. Fleetwood Mac played a critical role in shaping the history of rock music and has sold over 120 million records worldwide. Here's a song for celebrate his birthday. And friends, the lady writes in English, but she belongs to India. That's our English language Indian writer, author, teacher, Anita Desai. She turns a year older today. Desai has been shortlisted for the Booker Prize 3 times, in 1980, 1984, and 1999 for her novels Clear Light of Day, In Custody, and Feasting. Desai received the Sahitya Academy Award in 1978 for her novel Fire on the Mountain.
तो श्रोताओं, अब कार्यक्रम के अगले भाग में याद करते हैं उन महान हस्तियों को जो आज के दिन हमें अलविदा कह गए। आज पुण्यतिथि है भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती की। वे गोंडवाना की शासक थीं। रानी दुर्गावती ने 16 वर्ष तक जिस कुशलता से राजकाज संभाला उसकी प्रशस्ति इतिहासकारों ने की है। आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है, दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से करती थी। वे कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। आज ही के दिन 1564 में उन्होंने संसार को अलविदा कहा। इसके अलावा आज जयंती है हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रद्धाराम शर्मा की। वर्ष 1881 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। पंडित श्रद्धाराम शर्मा अथवा श्रद्धाराम फिल्लौरी एक प्रसिद्ध ज्योतिष थे, लेकिन एक ज्योतिष के रूप में उन्हें वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जो उनके द्वारा लिखी गई आरती ओम जय जगदीश हरे के कारण उन्हें प्राप्त हुई। उन्होंने इस आरती की रचना 1870 में की थी। पंडित जी सनातन धर्म प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और संगीतज्ञ होने के साथ साथ हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे। अपनी विलक्षण प्रतिभा और ओजस्वी वाक्पटुता के बल पर उन्होंने पंजाब में नई सामाजिक चेतना और धार्मिक उत्साह का मार्ग प्रशस्त किया। और श्रोताओं, आज ही के दिन 1950 में दरबान सिंह नेगी हमें अलविदा कह गए थे। वे उन चंद भारतीय सैनिकों में से एक थे जिन्होंने प्रथम विश्व के दौरान ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा युद्ध पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किया।
एंड फ्रेंड्स, लेट 80s एंड अर्ली 90s देयर वाज अ स्मूथ पॉप म्यूजिक बूम दैट ब्रॉट इन सम वेरी यंग सिंगर्स एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। वन ऑफ देम वाज हवाई बेस्ड सिंगर सॉन्गराइटर ग्लेन मेडीरोस, हुज पेरेंट्स केम फ्रॉम पोर्टुगल। वेल, दिस गाय हैड वन बिग स्मैश, अ कवर सॉन्ग, नथिंग्स गोना चेंज माय लव फॉर यू, दैट्स दैट। एंड आफ्टर दैट ग्लोबल हिट, ग्लेन वेंट इनटू म्यूजिक रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशन इन होनोलुलु। दिस सॉन्ग वाज रिकॉर्डेड व्हेन ही वाज जस्ट 17। टुडे ग्लेन टर्न्स 55।
श्रोताओं, आज सवेरे कार्यक्रम में बस आज इतना ही। दीजिए मुकेश और सुभद्रा को इजाजत।
Stay tuned for coming up now with Samacha Prabhat, a Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in, friends. Have a great day. Namaskar. Namaskar.